श्रीमद्भागवतम की जय मिथाय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 10। गंधर्व यवन आक्रांताम काल कन्या उपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा पुरी Matah. Gandharva Yavana Kranta.
Kala Kanyopamarditam.
Atum Prachakrame Raja. Tampurim Anikamatah. Gandharva Yavana Kranta. Kala Kanyopamarditam. Hatum Prachakrame Raja. Tampurim Anikamatah. Gandharva Yavana Kranta. Kala Kanyopamarditam. Hatum Prachakrame Raja. Tampurim Anikamatah.
Gandharva Yavana Kranta.
Kala Kanyopamarditam.
Hatum Prachakrame Raja.
Tampurim Anikamatah.
Gandharva Yavana Kranta.
Kala Kanyopamarditam.
Hatum Prachakrame Raja.
Tampurim Anikamatah.
Gandharva Yavana Kranta.
Kala Kanyopamarditam.
Hatum Prachakrame Raja.
Tampurim Anikamatah.
Gandharva Yavan सैनिकों द्वारा आक्रांताम हराया हुआ काल कन्या द्वारा
उपमर्दिताम कुचला हुआ
हातुम त्यागने के लिए प्रचक्रमे बाध्य हुआ राजा पुरंजन ताम उस पुरी को अनिकामतः अनिच्छित। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसे करना पड़ा क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। तात्पर्य बहुत लंबा है तो आधा पढ़ेंगे, आधा कल पढ़ लेना। मल्लेश्वर है कि तेरे अच्छे है ना? हरे कृष्णा, सब आ गए। तात्पर्य: जीव भगवान की संगति के विलग से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक हो सकता है इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा कालकन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आगार है। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह लौटकर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सुअर प्राय गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, और यदि कोई उसे उठाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो वह फिर वहीं लौट आता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार न था। दूसरे शब्दों में जीव चाहे जैसी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। तो अनुवाद को दोहराइए। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि कालकन्या ने उसे कुचल दिया था। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावरितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमात्मतो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मुखमिदं प्रातरत्नपरः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते दत्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। काल कन्या के प्रभाव में हम सब हैं। काल कन्या इस प्रकार से कार्य करती है कि हम सबको कुचल देती है, जैसे उन्होंने राजा पुरंजन के शरीर को कुचला दिया। भगवद गीता के कौन से श्लोक याद आते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं कि उनकी काल शक्ति कैसे कार्य करती है? कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्ध लोकान समाहर्तुम लोकान समाहर्त लोगों को क्या करने के लिए भगवान कहते हैं काल अस्मि, मैं ही काल हूँ। मैं हूँ काल हूँ का मतलब है कि काल भगवान की शक्ति है। लोक क्षय, ये संपूर्ण ग्रह ये संपूर्ण ब्रह्मांड का क्षय करने के लिए मैं आया हूँ। क्षय अर्थात विनाश है ना। तो लोक क्षय कृत प्रवृत्त है और मैं इसमें काल शक्ति के रूप में किसमें प्रवृत्त होता हूँ? लोकान समाहर्तुम। भगवद गीता का श्लोक देखो, उसका अनुवाद करो। मैं सारे प्राणियों के विनाश के लिए यहाँ पे आया हूँ। न केवल सारे लोग जितने ब्रह्मांड में हैं उनका विनाश होता है, परंतु जितने भी प्राणियाँ हैं 84 लाख योनियों में, उन सब का भी मैं विनाश करता हूँ। ये है काल का परिणाम या काल का प्रभाव। पढ़ो 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 श्लोक और अनुवाद पढ़ो।
श्री भगवान वाच कालो अस्मि
कालो अस्मि ने कालोस्मि कालो जब हम भेद करते हैं तब अस्मि कहते हैं, परंतु श्लोक के उच्चारण के समय वो अवग्रह है ना, ऐसा है ना, तो उसमें कालोस्मि हम उच्चारण करते हैं। केवल शब्द भेद करके समझाते समय हम काल है अस्मि कहेंगे, उच्चारण के समय कालोस्मि। पढ़ो।
कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा।
ये अवस्थिता नहीं, अभी वो है ना, अवग्रह है ना,
ये अवस्थिता
तो कैसे होना चाहिए? ये अवस्थिता,
ये अवस्थिता।
ये शब्द भेद करने से यह अवस्थिता है, परंतु उच्चारण के समय ये अवस्थिता है।
भगवान ने कहा समस्त जगतों को नष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे या तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
तो फिर से पहला भाग पढ़ो अनुवाद का।
भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ।
समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। तो यहाँ भौतिक सृष्टि में सृजन पालन और संहार होता है, ये काल चक्र होता है। काल चक्र में ये तीन चीजें अवश्य होती हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्यों में भगवद गीता में कि हर चीज छह स्तरों से निकलती है। कौन से हैं वो छह स्तर?
जन्म,
वृद्धि,
वृद्धि, परिपक्वता, फिर
कुछ काल तक रहना,
वो परिपक्वता में आ गया, फिर
वृद्धि करना,
उत्पत्ति करना, उत्पत्ति करना, फिर घटन होना और फिर विनष्ट होना। ये छह स्तर होते हैं। फिर से कौन सा? पहला जन्म, वृद्धि, परिपक्वता, उत्पत्ति, घटन, विनाश। तो ये सब क्यों होता है? काल के प्रभाव से। काल के प्रभाव से सब कुछ परिवर्तनशील है। तो सब कुछ बदलता क्यों है हर समय? कोई भी चीज एक साथ रहता नहीं है काल के प्रभाव के लिए। काल इस प्रकार से कार्य करता है कि हर चीज को बदलते रहता है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारी भावनाएं बदल रही हैं। और केवल हमारे शरीर नहीं, जितने भी योनियां हैं यहाँ पर वो सब बदलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड भी बदलता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण लोकों को विनष्ट करने के लिए आया हूँ। तो किस श्लोक में? भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि इस श्लोक में कैसे यहाँ सब कुछ होता है परंतु उनके धाम में नहीं होता। आठवें अध्याय में अव्यक्तो क्षरेत्युक्तस तम आहु। हाँ बोलो। अव्यक्तो क्षर इत्युक्तस तम आहु परमागते यद् गतवान् अनिवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। ये जगत जो है ये व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है, फिर से व्यक्त होता है, फिर से अव्यक्त होता है। परंतु इस व्यक्त व्यक्तो व्यक्ता सनातन है। इस अव्यक्त और व्यक्त जगत के परे एक सनातन धाम है, मेरा है। उसमें काल का प्रभाव नहीं होता है। वहाँ पे शरीर नहीं बदलते हैं, किसी को बुढ़ापा नहीं होता है, किसी का जन्म नहीं होता है, किसी का मरण नहीं होता है। परंतु इस सृष्टि में ये सब होता है काल के प्रभाव से। आठवें अध्याय का वो श्लोक पढ़ो। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तम आहु परमागते।
अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तम आहु परमागते यम प्राप्य अनिवृत्तन्ते तद्धाम परमं मम।
तो क्या इसका अनुवाद?
अनुवाद जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है।
तो भगवान का धाम इस व्यक्त और अव्यक्त जगत से परे है। ये भौतिक जगत कभी प्रकट होता है, फिर कभी लुप्त अवस्था में रहता है, परंतु भगवान का धाम सदैव स्थित रहता है। तो क्या वहाँ पे काल नहीं है भगवान के धाम में?
काल है? नहीं है।
फिर
लेकिन ये बदलाव वो नहीं करता वहाँ।
कैसे?
क्योंकि उधर काल कृष्ण कला से।
हाँ,
वो काल कृष्ण कला से।
यहाँ काल भी, यहाँ काल कृष्ण नहीं है,
मगर इधर हम कृष्ण कला से जो काल का अनुसार हम जीना पड़ता है। हाँ। और उधर कृष्ण के अनुसार काल जीते।
यहाँ पे कृष्ण के अनुसार काल नहीं चलता है।
इधर भी कृष्ण के अनुसार,
पर
हमारा अनुसार नहीं चलता।
हाँ। तो यहाँ और वहाँ में काल का क्या अंतर है?
वहाँ पे क्षय नहीं होता, काल क्षय करने की जो शक्ति वहाँ पे उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ पे
जो यहाँ काल का कार्य है क्षय का, लोक क्षय कृत प्रवृत्त। भौतिक सृष्टि में काल का काम ही ये है, क्षय करना, विनष्ट करना। परंतु वहाँ पे भगवान के धाम में काल का प्रभाव कैसे है, सब चीज़ों को और प्रफुल्लित करना, सब चीज़ों को और आनंदित करना। यहाँ काल का प्रभाव उल्टा है, और काल बदलता है, काल का, काल की जो गणना है वो भी बदलती रहती है। जैसे अभी एक छोटा कीड़ा होता है, अब छोटे कीड़े ऐसे कई होते हैं जो थोड़े मिनटों के लिए जीवित रहते हैं फिर मर जाते हैं। अभी हमें लगता है कि अरे इसकी जीवन की अवधि कितनी कम है, एक घंटे दो घंटे के लिए रहते हैं। रात के समय ऐसे कई कीड़े होते हैं जो उजाले के पास आते हैं, दीप के पास, वो थोड़े रहते हैं वहाँ पे, फिर मर जाते हैं। तो उनकी संपूर्ण जीवन की अवधि केवल दो चार घंटे की होती है, और हमें लगता है कि अरे इसकी जीवन की अवधि कितनी कम है, परंतु उसके लिए उसकी जीवन की अवधि कम नहीं है। उसके लिए तो वो अपने पूरा जीवन जी रहा है वो कीड़ा, ठीक है ना। उसको ये नहीं लगता कि मेरी जीवन की अवधि कितनी कम है, हमें लगता है हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारी जीवन की आयु उसकी तुलना में इतनी अधिक है, इसलिए हमें लगता है कि अरे ये तो कितना कम जी रहा है, और उससे भी कम और जीवन की अवधि वाले कीड़े हैं, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, और ऐसे कई छोटे 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 कीटाणु हैं जो केवल क्षणों तक रहते हैं। वो उनकी निर्धारित जीवन की अवधि है उतनी ही है, परंतु उनको नहीं लगता कि अरे हमारा जीवन कितना कम है, उनको लगता है हमारा, हम 100 साल जी रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से लगता है अरे कितना कम है। तो जिस प्रकार से छोटे कीड़े हैं और हम हैं, उसी प्रकार से हम और ऊपरी लोक में रहने वाले लोग, जैसे स्वर्ग लोक की जीवन की अवधि कितनी है, काल का परिणाम का परिमाण कैसे होता है,
1 साल 1 दिन।
हाँ, यहाँ का जो 1 साल है 365-360 दिन, वो स्वर्ग लोक के लिए 24 घंटे है। तो वहाँ जब उनके 24 घंटे बीत जाते हैं, हमारा 1 साल बीत जाता है। तो और आगे करके हमारे जो 100 साल हो जाएंगे, हाँ, तो उनके कितने, बस कम समय, बहुत कम समय। तो उनकी जीवन की अवधि हजारों 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 साल लंबी होती है। तो उनके दृष्टि से देखा जाए तो हम कीड़े के समान हैं। जैसे हम कीड़े की ओर देखते हैं ना, वैसे देवतागण हमारी ओर देखते हैं। उसे लगे ये मनुष्य का जन्म हुआ, बस खत्म हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी इनकी जन्म होता है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु स्वर्ग लोक में उनकी जीवन की अवधि इतनी लंबी होती है, स्वर्ग लोक से भी ऊपर महर लोक, जन लोक, उनकी जीवन की अवधि स्वर्ग लोक के निवासियों से बहुत अधिक है। उनको लगता है कि अरे स्वर्ग लोक के निवासी कितने कम समय के लिए जीते हैं। और ऊपर जाइए, ब्रह्म लोक तक जाइए, ब्रह्मा जी की अवधि कितनी है जीवन की, संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु जितनी है वो ब्रह्मा की आयु है। तो ब्रह्मा के दृष्टिकोण से ये स्वर्ग लोक के निवासी कितने हैं, वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं, ये महर लोक जन लोक के भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। अभी ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि कितनी लंबी है हम अनुमान लगाएं, ब्रह्मा जी के 1 दिन में कितने मन्वंतर होते हैं,
14,
और एक हर एक मन्वंतर में देवताओं का स्थान बदलता है। तो जो इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि है ना, ये सब पद है, ठीक है ना। तो ये एक मनमंत्र के लिए रहते हैं, एक मनमंत्र के बाद फिर दूसरे कोई जीव इंद्र चंद्र वरुण सूर्य आदि बन जाते हैं, और ऐसे 14 अलग अलग इंद्र चंद्र वरुण होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इंद्र की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी के एक दिन के 1/14 ही भाग है। आप समझ रहे हैं? और ऐसे ब्रह्मा जी के कितने दिन है एक साल में? ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन, ये एक साल, और ब्रह्मा जी के 100 साल। तो ब्रह्मा जी की आयु की तुलना में इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, इनकी जीवन की अवधि कितनी छोटी है? इतनी छोटी है। ब्रह्मा जी को लगता होगा जैसे ये छोटे हैं, बस अभी कीड़े आए हैं जा रहे हैं, और देवताओं की तुलना में हमारी आयु कितनी है? इतनी छोटी है। आप देखते समझ रहे हैं हमारे नीचे कितने कीड़े। तो सबसे जो कम जिसकी जीवन की अवधि है उस कीड़ों को देखिए, तो उससे लेके काल कैसे विस्तार हो रहा है। ठीक है, जीवन की अवधि बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ब्रह्मलोक तक कितनी लंबी होती। और आगे चलिए, महाविष्णु का एक सांस, महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हो जाता है, ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जिनकी जीवन की अवधि सबसे लंबी है भौतिक ब्रह्मांड में, उनकी जीवन की अवधि महाविष्णु के एक सांस के बराबर है। हम सांस लेते हैं ना, तब उस समय कितने कीटाणु अंदर लेते हैं, हम बाहर भी छोड़ते हैं। हवा में कितने छोटे छोटे वो कीड़े कीटाणु रहते हैं, वो अंदर भी जाते हैं हमारे सांस में, वो मर भी जाते हैं। तो हमारे एक सांस में कितने कीटाणु का जन्म होता है, मरते भी हैं। तो उसी तरह से महाविष्णु की तुलना में ब्रह्मा जी। और आगे चलिए वैकुंठ जगत में, ऐसे चलते चलते जब हम वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं, तब काल इतना लंबा हो जाता है कि असीमित हो जाता है। वहां जीवन की अवधि की कोई सीमा नहीं है, असीमित। आप समझ रहे हैं? तो कैसे काल वहां अनंत हो जाता है। यहां काल की जो गणना है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है, परंतु जब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं कोई सीमा नहीं। तो अभी जो मैंने बताया, आप में से कोई समझाएंगे अपने शब्दों में ये बात, जीवन की अवधि और काल का प्रभाव कैसे बताओगे?
काल भगवान की शक्ति है। आध्यात्मिक जगत में काल की गणना की सीमा नहीं है, वहाँ पे काल असीमित है और सब कुछ वृद्धि करता है, जैसे आनंद में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, परंतु विपरीत, उसके विपरीत भौतिक जगत में काल सब कुछ क्षय करता है। और यहाँ पे भी काल भगवान की इच्छा से सब लोगों का क्षय करता है। तो अलग अलग 84 लाख यूनियाँ जो हैं, तो उनमें से छोटा कृमि कीटाणु भी जो है वो भी जन्म लेता है और मरता है। जो 6 प्रकार के जो अलग अलग परिवर्तन होते हैं उससे वो गुजरता है, और ब्रह्मा जी भी ये 6 प्रकार के अलग अलग जो परिवर्तन है उनसे गुजरते हैं। लेकिन इनके बीच में हालांकि परिवर्तन एक ही है, परंतु काल की अवधि उनके ऊपर अलग अलग तरह से काम कर रही है। एक क्षण में एक कीटाणु जन्म लेगा और पालन करेगा, बड़ा होगा और जन्म भी देगा, बूढ़ा हो जाएगा और
उसका सारा संसार चलेगा उसमें, उसके बच्चे होंगे, उसके ये होंगे, वो होंगे, सब उसको एक क्षण के अंदर उसका जीवन बीत गया।
लेकिन ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य समाज में जब हम आते हैं तो वो एक हमारे लिए एक क्षण के समान है, परंतु मनुष्य के लिए लगता है कि वो क्या है? इतने जल्दी जी के मर भी रहा है, पलक झपकते हुए या
फिर एक सांस को क्या लगता है?
उसको लगता है कि मेरे तो पूरी अवधि मैंने जी ली,
पूरा जीवन मैंने जी लिया, कीड़े को नहीं लगता कि मेरा जीवन इतना छोटा है, है ना।
तो उसी तरह से जब हम और ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में, तो स्वर्ग लोकों के जो निवासी होते हैं वो मनुष्य समाज को देखने से उनको लगता है कि ये तो केवल 100 दिन में 100 साल ये जी लिए, यानी कि जैसे हम मच्छर को देख के जो 3 दिन में जन्म लेके मर भी जाता है, उसी तरह से हम हमारे ओर देखते हुए देवता लोग भी कहते हैं कि ये कितने जल्दी से जन्म लेके मर भी जा रहे हैं, और उतने में ही हम सब कुछ करते हैं हमारा जीवन इतना चला, हमको लगता है कि हमारे जीवन कितना बड़ा है। और भी ऊपर जाएंगे तो ऊपर के लोगों के महरलोक, जनलोक, तपलोक के लोग जब स्वर्ग लोकों पे नजर डालते हैं तो उनको लगता है कि ये तो केवल 71 चतुर्युग तक ही जी रहे केवल, और उनके लिए तो एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन उनके लिए आयु है, तो 14 बार ब्रह्मा जी इंद्र आके जा रहे हैं, तो हर बार वो अलग अलग इंद्र को मिल रहे हैं, कोई पता नहीं ये कौन से इंद्र है।
ये जगह थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे फिर से, ये पोजीशन बदलते हैं ना 14 देवताओं के।
तो देवताओं का ये पद होता है पोस्ट, ये जैसे मंत्री होते हैं किसी देश में, कोई वित्त मंत्री होते हैं, कोई कृषि मंत्री होते हैं, कोई कुछ रक्षा मंत्री होते हैं, ये बदलते रहते हैं, जब चुनाव होता है फिर बदलते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के व्यवस्थापन के लिए भगवान ने ऐसे मंत्री बनाए हैं, इनको देवता बोलते हैं।
तो जो अब आज इंद्र देव है कल सूर्य देव भी बन सकते हैं, ऐसा है क्या? या फिर
जो जीव है ये सब पोस्ट है, पद, तो अलग अलग जीवों को जो योग्य है उनको ये पद मिलता है। जैसे कोई योग्य व्यक्ति को जो चुनाव जीता है उसको कोई रक्षा मंत्री का पद मिलता है, किसी को प्रधानमंत्री का पद मिलता है, तो उसी प्रकार से ये पद है इंद्र, चंद्र, वरुण, और किसी योग्य जीव को मिल जाता है। फिर वो थोड़े समय के लिए, उसकी अवधि जितनी होती है एक मनमंत्र उतना वो रहता है, उसके बाद फिर और कोई बन जाता है, ऐसे है। आगे
तो महरलोक, जनलोक, तपलोक के निवासियों को देख के ब्रह्मलोक के लोग भी वैसे ही सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी इनका जन्म और मृत्यु हो रहा है, लेकिन हमारी आयु इतनी बड़ी है, और उनमें से तो ब्रह्मा जी की तो आयु पूर्ण 100 साल, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जो आयु है उतनी आयु है, तो फिर भी उनका भी मृत्यु होता है, और फिर वो उत्पन्न होते हैं महाविष्णु से। वो जैसे स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य एक अनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन तिलो मंगलजा जगदंडनाथ। तो ब्रह्मा जी महाविष्णु के एक श्वास से जन्म लेते हैं, जब श्वास बाहर निकलता है तो फिर जब श्वास अंदर चला जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ब्रह्मांड की अवधि है। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते महाविष्णु तो शाश्वत हैं, लेकिन ऐसे वैकुंठ लोक और ऊपर के लोकों में, खास करके गोलोक वृंदावन में जो काल है, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है कि वहाँ पे सब कुछ वृद्धि होने लगता है, लेकिन कभी कुछ क्षय नहीं होता।
बहुत अच्छा। और ब्रह्म संहिता में क्या बताया गया है काल के बारे में? निमेषार्धाख्यो वा वृजति नहीं यत्रापि समयः, इसका क्या मतलब है?
आधा निमिष भी वहां पे बीतता नहीं।
आधा निमिष, निमिष में बहुत छोटा समय, इस समय की अवधि होती है, क्षण से भी कम, वो आधा से बीतता नहीं है कुछ वहां पे, सब कुछ वहां वर्तमान में रहता है। तो ऐसे ही काल का प्रभाव, ये काल ऐसी शक्ति है जिसको हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। हम काल का हम माप ले सकते, नाप सकते हैं, कोई हमारे घड़ी से ऐसे हम, हाँ, हम पूछेंगे समय क्या है, बोलेंगे 7:45, 8:10 हो गए, परंतु ये तो काल का नाप है, काल क्या है वो नहीं पता किसी को। ये काल को हम माप रहे हैं, परंतु काल है क्या?
भगवान की शक्ति,
भगवान की शक्ति है, वो अभी तो कोई वैज्ञानिक कोई भी नहीं समझ सकता काल शक्ति, कि काल है क्या, हम तो केवल काल को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं बस। अभी 8 बज गया, अभी 9 बज गया, मतलब क्या? 8 बज गया, 9 बज गया, मतलब वो 1 घंटा बीत गया। परंतु ये शक्ति है क्या, क्या बीत रहा है?
इस जगत में काल को देखेंगे कैसे? वो क्षय के रूप में भगवान,
हाँ, काल का परिणाम,
परिणाम
काल को हम देखते हैं उसके कार्य से। किसी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं हम?
उनके
कार्यों से। तो भगवान की शक्ति जो काल है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसके प्रभाव से, इसके कार्य से, इसके परिणाम से। तो काल का परिणाम यहाँ क्या होता है? कौन सा श्लोक था वो 11वें अध्याय का? कालोस्मि लोक क्षय, ठीक है, लोगों का, समस्त लोगों का क्षय करने के लिए आए हो। और कृत प्रवृत्तः, आगे पढ़ो, लोकान समाहर्तुम, शब्द शब्दों का अर्थ पढ़ो उसमें।
लोकान मतलब समस्त लोगों का, समाहर्तुम नष्ट करने में, इह इस संसार में प्रवृत्तः लगा हुआ।
तो काल समस्त लोगों के को विनष्ट करने में लगा हुआ है, लगी हुई है काल शक्ति। तो यह काल का काम भौतिक जगत में। इसलिए हम जितना भी चाहें हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, हमारे धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए, अन्य किसी भी चीज़ की रक्षा करने के लिए, उसका विनाश निश्चित है, होगा ही होगा। इसलिए हमें उस चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो कभी विनष्ट नहीं होगा। वो क्या है? हमारे शरीर से संबंधित नहीं, हमारे आत्मा से संबंधित जो भी है, और वो है हमारा नित्य संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ। इसका विनाश कभी नहीं होगा, ना आत्मा का विनाश होगा, ना भक्ति का विनाश होगा, ना भगवान का विनाश होगा। ये सब अविनाशी है। तो राजा पुरंजन के ऊपर अभी पूरा आक्रमण हो चुका है काल कन्या का। कोई काल के चंगुल से फंस नहीं सके, से बच नहीं सकता है। काल की चक्की चल रही होती है। अभी यहाँ पे हम लोग चटनी बनाते हैं ना, मसाला, रगड़ा, रगड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब पीस जाते हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति। इसलिए यहाँ क्या बताया, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। तो ये काल वो रगड़े का काम करता है, सबको पीस के रख देता है, कुचल के रख देता है। बड़े बड़े कितने राजा महाराजा हुए इतिहास में, ने जिन्होंने सारे विश्व को जीत लिया, और अब कहाँ गए? वो काल के द्वारा कुचले गए, पूरी तरह से खत्म, कब नामो निशान नहीं उनका कुछ। कहाँ गया वो शरीर? मिट्टी में मिल गया, है ही नहीं अभी। तो इस प्रकार से काल का प्रभाव होता है। कौन बच जाते हैं? थोड़े बहुत कुचल 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 के थोड़े जो बाहर आते हैं, जब रगड़ा करते हैं ना, माता जी लोग करते हो ना, रगड़ा करते हो तो ऐसे ऐसे थोड़ा बाहर आता है, क्या करते हो उसको?
फिर से अंदर डाल देते हैं।
बराबर ना? तो थोड़े थोड़े काल से थोड़ा पिस जाते हैं, भक्त लोग भी पिस जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आते ऊपर, ठीक है, इसलिए थोड़ा बच जाते हैं फिर काल के प्रभाव से। थोड़ा पिसना तो है ही, क्योंकि शरीर है ना, लेकिन थोड़ा वो चटनी बाहर आ जाता है, मसाला, वो थोड़ा बच जाते हैं फिर। नहीं तो बाकी जो अंदर है वो तो पिसते जा रहे हैं। ये उदाहरण समझ रहे हैं ना? तो ये रगड़ा है काल, काम करने सबको पिस के जा रहा है। तो पुरंजन बेचारा सोच रहा था, मैं सनातन यहाँ पे रहूँ, खूब भोग करूँ, लेकिन ये संभव नहीं था। और एक जो बात यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति अपने वर्तमान काल के परिस्थिति से आसक्त तो रहता है, उस काम को छोड़ना नहीं चाहता है, यद्यपि वो स्थान बहुत दुख से भरा हुआ क्यों न हो। वो आसक्ति के कारण माया के प्रभाव में वो व्यक्ति सोचता है कि यही सबसे अच्छा स्थान है। कौन सी कथा याद आती है इसके बारे में? प्रभुपाद जी सुअर की बात भी करते हैं, आप बताओ। इंदिरा, किसने कहा इंदिरा? हाँ बताओ।
स्पष्ट पता नहीं, फिर प्रयास करूँगा। और एक बार इंद्र को श्राप मिला था।
श्राप मिला था, क्यों श्राप मिला था? उसने एक ऋषि का अपमान किया था, ऋषि के प्रति अपराध किया था, तो उसे श्राप मिल गया। क्या श्राप था? तुम सुअर बन जाओ, सुअर के शरीर में चले जाओ। तो
वरह अवतार है तो?
नहीं नहीं, ये सब ऐसा प्रवचन के बीच में नहीं बोल रहा है।
वो लोग पे उनका जन्म हुआ, तो उनका वो उनका एक फैमिली इधर संसार में, उनका फैमिली ये सब क्रिएशन सृष्टि चल रही थी। तो बाद में एक और उनका जो श्राप का जो अवधि था वो खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी आके उनको अवगत करवाया कि आपका अभी श्राप खत्म हुआ है और अभी इंद्र का पोस्ट खाली है और जाना चाहिए। तो वो उनसे बच्चों से उनका पत्नी से इतना आसक्त थे कि वो नहीं जाना चाहते तो स्वर्ग लोगों को। तो ब्रह्मा जी उधर बहुत प्रयास से उनको ले जा रहा था।
बहुत अच्छा। तो इंद्रदेव को जब श्राप मिला कि तुम्हें सुअर का शरीर मिलेगा थोड़े समय के लिए, फिर इंद्रदेव का पद खाली हो गया थोड़े समय के लिए ना, थोड़े क्षणों के लिए भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ का जीवन उनके लिए तो एक क्षण है बस। फिर भी ऊपर का लोग खाली नहीं हो सकता, जैसे कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं तो कैसे चलेगा, राजा है ही नहीं, ठीक नहीं है। तो यहाँ सुअर का शरीर मिल गया, और सुअर का शरीर मिला तो सुअर के शरीर का वो समाज का राजा भी बन गया, क्योंकि इंद्रदेव था उधर। तो यहाँ भी बड़ा सुअर समाज का राजा बन गया, और यहाँ बन के उसका परिवार हो गया, बहुत सारी प्रजा हो गई, सब लोग उसको बहुत आदर सत्कार करते थे, और आसक्त तो हो गया वहाँ से। अब ब्रह्मा जी और नारद जी ने सोचा कि चलो अभी समय हो गया है, तो श्राप का समय खत्म हो गया तो अभी चलो वापस। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी कौन देखभाल करेगा इनका, मुझे इतना सब काम है करना है इधर। वो आसक्त हो गया, छोड़ना नहीं चाहता था। कहाँ इंद्र का पद, कहाँ नंदन कानन वन, और कहाँ सोम रस, और कहाँ अप्सरा इत्यादि, और कहाँ ये सुअर का शरीर, तुलना की जा सकती है क्या? नहीं। परंतु उस समय इंद्र को सुअर के शरीर में लगा कि बस यही ठीक है। अरे तुम इंद्र हो, मुझे पता है इंद्र हो, लेकिन ये कि देखो मेरे पीछे कितने छोटे छोटे बच्चे ऑन 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 करके ये कर रहे हैं, मेरे ऊपर निर्भर है ये छोटे छोटे बच्चे, अभी क्या करेंगे। हाँ, तो इंद्रदेव के पद को भी त्याग कर वो सूर्य के बन के ही रहना चाहता था। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माया का प्रभाव ऐसे चलता है कि हर एक व्यक्ति अपने परिस्थिति को सर्वश्रेष्ठ मानता है, बस यही है। तो उसी प्रकार से हम ये भौतिक जगत में रहते हैं, और हमें पता नहीं कि गोलोक वृंदावन में हमारे लिए कितना सुंदर स्थान है, कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारे लिए, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई तंग नहीं करता, कोई हैरान नहीं करता। तो वहाँ कितना सुंदर, फिर हमको लगता है कि यहाँ भौतिक जगत में कितना अच्छा है। ये है माया। तो राजा पुरंजन ने भी बहुत प्रयास किया अपने शरीर को सब कुछ बचाने के लिए, परंतु निष्फल था उसका प्रयास, व्यर्थ गया उसका प्रयास, और अंततः जैसे किंतु परिस्थिति बस उसे ऐसा। और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा। हम में से कोई मरना नहीं चाहता है, परंतु जबरदस्ती हमें शरीर छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, और ये हर जन्म में होता है। हर जन्म में हम रोते हैं जाते जाते, आते आते भी रोते हैं, जन्म लेते लेते जाते जाते भी रोते हैं कि हमको नहीं जाना है, नहीं जाना है। परंतु जबरदस्ती प्रकृति के कड़े नियमों के अंतर्गत हमें छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये है ये भौतिक जगत का वर्णन, कितना दुखों से भरा हुआ है। तो हमें अभी भगवद गीता भागवत के ज्ञान को प्राप्त करके अब हमारे दृष्टि गोलोक वृंदावन के ऊपर केंद्रित करनी चाहिए, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ काल का प्रभाव कितना सकारात्मक है, आनंदवर्धक है। यहाँ पे काल का प्रभाव दुखवर्धक है। हरे कृष्णा। इसी की कोई प्रश्न है?
काल का जो सकारात्मक परिणाम है वो कैसे होता है?
वो भगवान के धाम में पाया जाता है, भगवान की लीला में, भगवान के कार्यों में वो और आनंद प्रदान करता है। ठीक है
महाराज, ये काल का विषय में भीष्म देव जी सर्वकालम कृतम मन्ये, वो समय पे पांडवों को बोल रहे थे यद्यपि आप सब लोग पुण्यवान थे फिर भी मुझे लगता है ये काल का प्रभाव से आपका ऊपर हुआ, नहीं तो आप तो वो काल का
तो प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में क्या समझाते हैं कि काल का प्रभाव मतलब क्या?
भगवान की इच्छा।
भगवान की इच्छा, तो भगवान की कोई योजना होगी, भगवान की कोई इच्छा है, कोई योजना है आप सबके लिए, इसलिए आप सबके साथ ऐसे हो रहा है। आप तो भगवान के पार्षद हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप इतने पुण्यात्मा हैं, फिर भी आपके प्रति इतने अन्याय हुए, इतना अत्याचार हुआ, तो आपने कोई साधारण कर्म नहीं किए जिसके फलस्वरूप आपको ये सब दुख झेलना पड़ रहा है। आप तो साधारण लोग नहीं हैं, और आप भक्त हैं तो भक्तों को ऐसा होना ही नहीं चाहिए, फिर क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की आप सबके लिए ये कोई योजना है।
ये हम कैसे समझ सकते हैं महाराज, ये हमारा ऊपर काल का प्रभाव रूप में हमारा कर्म का या भगवान की इच्छा
है? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि ये मेरे बुरे कर्मों का प्रभाव है और भगवान की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। कौन सा श्लोक श्रीमद् भागवत का? बहुत अच्छा, क्या अर्थ है इसका?
अनुकंपा के लिए मैं वेट करते हुए,
अनुकंपा अर्थात कृपा,
कृपा तत्कंपा सुषुमीक्षमान
प्रतीक्षा करते
हुए विपाक, मेरा जो भी मेरा पाप का कर्म है मैं उसको विपाक, जो भी विपाक मेरे रूप में आया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मुझे
जो भी कष्ट मेरे जीवन में आते हैं मैं इस दृष्टि से स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने ही बुरे कर्म किए हुए थे जो भूतकाल में, उनका फल मुझे अब मिल रहा है। दूसरे शब्दों में मेरे दुखों का कारण मैं ही हूँ और मेरे बुरे कर्मों का परिणाम अब मुझे मिल रहा है। तो दूसरों को दोष नहीं देना है कि इनकी वजह से ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हुआ, नहीं, मेरे वजह से हुआ। हाँ, फिर आगे
फिर वो ऐसा भावना में रखते हुए फिर भी रिद्वान वपुर भी विदधान नमस्ते, मैं हृदय से वाक से वपुर शरीर से तो मैं आपको कभी भी आपका सेवा करते रहता हूँ, नमस्ते विदधान नमस्ते। ये व्यक्ति जो है मुक्ति पाने के लिए योग्य व्यक्ति।
जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो ऐसा व्यक्ति जो अपने कष्टों को सहन करते हुए ये सोचते हुए कि ये सारे कष्ट जो हैं ये केवल मेरे पाप कर्मों के फल हैं और उनको सहन करता है, और सहन करते करते हाथ के ऊपर हाथ बैठ के ऐसे रख के बैठा हुआ नहीं है, वो क्या करता है अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने शरीर से भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहता है। ऋद्वा वपुर भी विदधन नमस्ते, तो ऐसा व्यक्ति जो सतत भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा हुआ रहता है चाहे उसके जीवन में कष्ट आए, सुख आए, दुख आए, जो भी हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवेत, ऐसा यदि कोई व्यक्ति जिएगा, यह वो व्यक्ति मुक्ति पद के लिए योग्य हो जाएगा। दाय भाग अर्थात वारस बोलते हैं, वो अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना चाहिए हर एक भक्त को। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरिहरिदेव। तभी हम लोग 10-12 मिनट में गुरु पूजा कर लेंगे। हाँ, तो कोई जल्दी से शुरू कर लीजिए।
जय प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद।
जय प्रभुपाद।